ईशो पंचनमो यारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येषिं पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। पंच परमिष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, छह अनायतनों का वर्णन समाप्त हुआ। अंतिम तीन मूर्ताओं का विषय सुनना शेष है। मूर्ता मूढ़ने अज्ञान, अज्ञानता का जो भाव होता है उसको मूढ़ता कहते हैं। गुण और दोषों का विचार किए बिना किसी भी कार्य को स्वीकार करना और उससे धर्म की मान्यता देना या अपने जीवन के सुख दुख इसके माध्यम से आते ही जाते ही इस प्रकार से धारणा बना लेना, ये मूर्ता का लक्षण है। मूर्ताएं संसार में बहुत प्रकार की होती है, इनकी कोई गणना नहीं हो सकती कितने प्रकार की है। कोई मूर्ता बड़ी होती है, कोई मूर्ता छोटी होती है, कोई मध्यम होती है, बहुत से इसके विकल्प हैं। मूर्ता भी सम्यक दर्शन का दोष माना जाता है क्योंकि जीव मूढ़ होकर के अज्ञानी बनकर के जिस कार्य को करता है उस कार्य का नाम ही मूर्ता है। ज्ञानी बनकर के कार्य करना, ज्ञानी बनकर के ही धर्म करना, ज्ञानी बनकर के ही प्रत्येक विषय को सोच समझ करके जीवन में उसे उतारना, ये ज्ञान का लक्षण है। ज्ञान अपने पास यदि है तो हम अज्ञान पूर्वक कुछ भी नहीं करते। ज्ञान है तो ज्ञान पूर्वक ही करते हैं और अज्ञान हो तो अज्ञान पूर्वक ही सब कुछ करते हैं। तो अज्ञान सारे दोषों का जन्मदाता होता है। अज्ञान समस्त दोषों का जन्मदाता होता है और ज्ञान समस्त गुणों का जन्मदाता होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में ज्ञान वरदान सिद्ध होता है और अज्ञान अभिशाप सिद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले अज्ञान को ठिकाने पर लाना चाहिए। व्यक्ति भटकता कहां? अज्ञान के कारण से भटकता है, विचार नहीं कर पाता, दोष ही दोष करता है, और यदि वह दोष से मुक्त होकर के निर्दोषी बनना चाहता है, सुखी बनना चाहता है, सही सन्मार्ग पर चलना चाहता है, तो आवश्यक है कि वह सबसे पहले अपने अज्ञान को दूर करे। अज्ञान बड़ा जीवन के लिए विष है, जहर है, और ज्ञान अमृत है, आनंद है, सुख है। ज्ञान सुख रूप है, आनंद रूप है, ज्ञान सन्मार्ग रूप है, ज्ञान सच्चाई है, सत्य है, और सारे हित, सभी हितों का संपादन ज्ञान से ही होता है। और इस ज्ञान को देने वाले और लेने वाले, ये दोनों जब मिल जाते हैं, दोनों का हित हो जाता है। देने वाले हैं और लेने वाले नहीं हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ। देने वाले जब से हैं, लेने वाले भी थे। जो भी तीर्थंकर बन गए, उनको सुनने वाले कभी समोह शरण में आए नहीं, ऐसा एक दिन भी खाली नहीं गया। सुनने वाले रहते ही हैं। सुनने वाले क्यों रहते हैं, उसका कारण है। सुनने वाले हमेशा क्यों रहते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ना सुनने वाले नहीं रहते हैं, उसका भी कारण है। सुनने वाले सुनते हैं, रहते हैं, बर हमेशा रहते हैं, ज्ञाप नहीं होता, उसका कारण है। क्या कारण है? जीव प्रति समय सुख ही चाहता है, सुख की खोज में रहता है, ये कारण है उसका। जीव को पूछो तुम्हें क्या चाहिए, उसे कहता सुख चाहिए, अच्छा चाहिए, बुरा नहीं, हमारे जीवन में बुरा कुछ नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए। ये जो जिज्ञासा है, ये जो इच्छा शक्ति है, इस इच्छा शक्ति के कारण से ही जीव आकर्षित होते और उस इच्छा शक्ति की पूर्ति भगवान से होती है, और इसलिए भगवान के सामने उनको सुनने के लिए, उनसे सुनने के लिए सभी आते हैं। उनको सुनना और उनका सुनना बहुत अंतर। भगवान कैसे हैं भगवान नहीं बताते, उनको सुनना हो तो समूह शरण के वातावरण में आ जाओ। तो वो क्या है, इसको बतलाने वाले भी वहां बैठे हैं। वो हमारे जीवन के क्या हित हैं, क्या सुख हैं, बतलाने वाले भी बैठे हैं, वो बताएंगे। भगवान को सुनना हो तो भगवान को भी सुन सकते हैं, या भगवान का सुनना हो तो भगवान का भी सुन सकते। समोषण में आना पड़ेगा। भगवान को सुनना हो तो बाहर कोई जाकर के सुना सकता है। भगवान का सुनना हो समोशरण में ही आना पड़ेगा। आपके पास आकर के नहीं सुनाएंगे, भगवान को सुनना हो तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। और जब हम निकट जाते हैं सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान को हम घर में भी सुन सकते थे, लेकिन भगवान जब थे तब सीडी नहीं थी, टीवी नहीं आया था, टेप रिकॉर्डर नहीं था, और देव लोग भी इतने चालाक थे कि भगवान की दिव्य ध्वनि को अपनी अपनी भाषा में कन्वर्ट करने की योग्यता रखते थे। श्रोताओं की भाषा जो भी है, मराठी, हिंदी, कन्नड़, इंग्लिश, जो भी भाषा, उसमें कन्वर्ट करके उन तक पहुंचाने की योग्यता रखते थे। परंतु पहुंचाने के उपरांत जब वो घर जाते, ये मशीन ले जाओ, रिकॉर्ड किया है, टेप रिकॉर्डर, घर में भी सुनना भगवान को, देते नहीं थे। हालांकि दे सकते थे, भगवान की वाणी को भर करके वो दे सकते थे, लेकिन दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया होगा? लोग प्रमादी बन जाएंगे। और साक्षात भगवान होते हुए उनको तो छोड़ करके हिलना नहीं चाहिए, उनको छोड़ करके इधर उधर जाना ही नहीं चाहिए। और यदि भगवान का सुनने के लिए उनको कुछ बांध बूंद करके दे दिया तो घर में सो जाएगा, प्रमादी बन जाएगा, दिया नहीं। लेकिन आज देना पड़ रहा है, आज देना पड़ रहा है। वो यहां सुन ले या घर में सुन ले, सुनना आवश्यक हो गया है। पहला ऐसा नहीं था, सुनने की इच्छा सब रखते थे। और भगवान का समोचरण आया तो भगवान को छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं थे, अनायतन का सेवन होता नहीं था। इसलिए चौथे काल में जैन संघ एक ही रहा जब तक भगवान रहे। आज जैन संघ एक का दो, दो का तीन, तीन का चार, चार का आठ, आठ का सोलह बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? व्यक्ति को भगवान का सुनने के लिए मिल ही नहीं रहा, इसलिए बढ़ रहा है। असली वचन क्या है उनके, वो सुनने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जैन संघ बढ़ रहा है। इस तीर्थ के उपदेशक, इस गंगा को बहाने वाले, इस अमृत को बहाने वाले एक ही थे। एक थे तो जिस समय थे उस समय थे, वहीं जाना पड़ता था। जो मिला वो सर्वोपरि है, डायरेक्ट मिल गया। आज इनडायरेक्ट मिलता है, साक्षात वो तो आएंगे नहीं। आज इनडायरेक्ट मिलता है क्या मतलब, उनके द्वारा प्रदत्त वाणी गुरुओं के मुख से मिलता है। पहले साक्षात मिलता था, आज गुरु माध्यम है, गुरु के माध्यम से उनकी वाणी को हम सुनते हैं। भगवान उस समय एक ही थे, लेकिन गुरु इस समय अनेक हैं और सभी केवल ज्ञानी नहीं हैं, सभी छद्मस्थ हैं। अब गुरु तो गुरु का स्थान तो गुरु का स्थान है, गुरु के स्थान से नीचे भी आ सकते हैं और नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यहां तो हो सकता है लेकिन भगवान का ऐसा नहीं हो सकता। भगवान तेरहवें को छोड़कर के चौथे में नहीं आ सकते, भगवान तेरहवें को छोड़कर के छठे में आकर मुनि नहीं बन सकते, पतन तेरहवें के बाद संभव नहीं, पतन छठे में संभव है। मुनि के मन में राग उपजाया जा सकता है, राग पैदा कराया जा सकता है, किसके प्रति? वस्तु के प्रति, परिग्रह के प्रति। यदि हम पैदा करा दें, कराया जा सकता है, पात्रता तो है, नीचे के आने की पात्रता है, तो निश्चित रूप से उसमें राग भाव पैदा कराने की पात्रता तो है। अगर किसी ने गुरु के मन में परिग्रह के प्रति राग पैदा करा दिया तो गुरु का गुणस्थान गिर गया, कहां आ गए? नीचे। वो पंचम में भी आ सकते हैं, चौथे में भी आ सकते हैं, तीसरे में भी आ सकते हैं, दूसरे पहले में भी आ सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए? राग पैदा कराने वाला चाहिए। अगर राग पैदा हो गया परिग्रह के प्रति, वस्त्र से लेकर के सब दस प्रकार के परिग्रह सभी ले लेना, किसी एक परिग्रह के प्रति भी अगर राग पैदा करा दिया तो गुरु नीचे आ जाएंगे। किंतु यह काम भगवान के प्रति करो, देखेंगे। तेरहवें में पहुंच गए हैं, केवल ज्ञान हो चुका है और उनको धीरे धीरे मुनि अवस्था में लाना, मुनि अवस्था से चौथे गुण स्थान में लाना संभव? संभव नहीं है। वो संभव नहीं है, वो वीतरागी हैं, वीतरागी ही रहेंगे। और ऐसी अनासक्ति के भाव यदि गुरु में जग जाए, गुरु इतने दृढ़ हों कि परिग्रह के प्रति रागादि भाव नहीं करेंगे, तो भगवान में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहेगा, वो भी नहीं गिरते और ये भी नहीं गिरते, वो भगवान ही माने जाएंगे। नहीं गिरे तो केवल ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन पात्रता भगवान के समान पात्रता अगर सुरक्षित रखते हैं और छठे से नीचे नहीं आते हैं तो फिर कितने महान है? तो भगवान ही है, गुरु भगवान बन जाते हैं। और ऐसे गुरु ही भगवान की वाणी को यथावत पहुंचा सकते हैं, जैसा है वैसा, उसमें स्वार्थ नहीं, कम वेशी नहीं। लेकिन गुरु में अगर स्वार्थ आ गया तो उनकी वाणी को यथावत पहुंचा सकते हैं क्या? और ये घटनाएं उनके मोक्ष जाने के बाद घटने लगी। गुरु ने शास्त्र बनाया, निर्दोष गुरु अलग थे, जिन्होंने राग जगाया गुरु में, राग जग गया, परिग्रह का ग्रहण हुआ और जिसने जगाया, अब जिसमें जग गया ये दोनों ही मिलकर के परिग्रही हो गए। और फिर उस वेश में उस गुरु को गुरु मान्यता भी उसने दे दी। किसने? जिसने परिग्रह दिया, गुरु मान्यता भी दे दी। अब गुरु परिग्रह के देने के उपरांत भी गुरु मान्यता दे दी तो फिर परिग्रह रहते हुए भगवान की मान्यता देने में भी संकोच होंगे थोड़ी? संकोच थोड़ी होगा, तुम ही हमारे भगवान हो, कहेगा ही। जो परिग्रह में स्वयं अंधा है वो दूसरे को भी परिग्रह में अंधा बनाना चाहता है तो एन के एन प्रकार ने कैसा भी बना लेगा, कैसा भी बनाना चाहेगा। परिग्रह ले लो फिर भी हम यथावत पहले जैसे आप थे वैसे हम पूजा करेंगे आपकी, वैसी मान्यता देंगे। दोगे? हाँ देंगे। फिर दोस्ती हो गई, परिग्रह के परिग्रहवान के साथ परिग्रह वाले की अपरिग्रह वाले की दोस्ती हो गई। हाँ देंगे ये भी खुश। उन्होंने कहा आप दोगे? हाँ हम देंगे तो हम लेंगे, बस दोस्ती हो गई। इतने में ही धर्म का पतन हुआ। धर्म का पतन आज तक इस दुनिया में जब भी हुआ है परिग्रह के कारण से हुआ है। गुरु गया असंयम में तो फिर रत्नत्रय भी गया। गया रत्नत्रय अब लौटेगा नहीं, तब तक नहीं लौटेगा जब तक कि इसको अपराध नहीं समझोगे। मैंने जो परिग्रह धारण किया है और इन्होंने जो दिया है, इनके बातों में जो हम आकर के फंस गए हैं, इनके बातों में आकर के मैं जो फंस गया हूं, इस बात के प्रति जब तक प्रायश्चित नहीं करेगा अफसोस नहीं होगा, अपने आप को अपराधी नहीं मानेगा, आत्मनिंदा ग्रह आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान जब तक नहीं करेगा तब तक आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थितिकरण वो स्वयं नहीं कर सकता। अपनी आत्मा को पुनः मोक्ष मार्ग में स्थितिकरण करने के लिए दूसरा कोई इसमें कारण नहीं बन सकता, सहायक बन सकता है, परंतु अपनी आत्मा को जो अनायतन स्वरूप असंयम के मार्ग पर आया है उठा करके संयम के मार्ग पर लगाने हेतु स्वयं को ही विचार करना पड़ेगा। स्वयं में पुनः एक बार अनासक्ति के भाव जगाने पड़ेंगे। वो अनासक्ति के भाव नहीं आते हैं तो असंयम ही रहता है, और अनासक्ति के भाव पुनः जग गए तो कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी परिवार में रहे, किसी भी कुल में रहे, किसी जाति में रहे, किसी देश में रहे, आसक्ति को छोड़ने के लिए कोई बंधन हमारे लिए बाधक नहीं बन सकता। परिग्रह छोड़ने वाले को कोई बंधन हमको रोक नहीं सकता। मैं छोड़ूंगा छोड़ूंगा, कौन पूछने वाला? नदी का पानी पीने के लिए जो व्यक्ति जाता है प्यासा है, किसी का परमिशन लेना नहीं पड़ता है ना, कि हमें नदी पर पूछ के जाना पड़ेगा किसी से। नदी किसी का मालिक है, किसी की बपौती है, किसी की संपत्ति है। नदी एक सार्वजनिक है। जैसे नदी सार्वजनिक है वैसे धर्म सार्वजनिक है। जिसको धर्म कहा है वो किसी की बपौती नहीं होती, नदी की तरह सामुदायिक संपत्ति होती है। उस ओर वही जा सकता है जो अनासक्त है। बस एक ही शर्त, अनासक्त व्यक्ति ही उधर जा सकता है, आसक्ति जिसमें है वो नहीं जा सकता। बस सवाल इतना है, कुल का, जाति का, संप्रदाय का, शरीर का कोई सवाल नहीं, कोई बंधन बीच में आ ही नहीं सकता, कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकता। आपके मन की आसक्ति टूट गई, आप बन गए धर्मात्मा। और उस पवित्र धर्म के उपदेशक हैं तीर्थंकर, जो सार्वजनिक है, जो निर्दोष है, निर्मल है। हिमालय के हिमानी चट्टाने जब पिघलती हैं तो शुद्ध जल धारा वहां से प्रवाहित होती है। वही गंगा में जब आती है तो गंगा जल पवित्र, गंगा जल पवित्र, गंगा जल पवित्र। हिमालय से गंगा निकली है इसलिए गंगा जल पवित्र है। इधर छोटे मोटे पहाड़ों से निकली होती तो पवित्र नहीं कहते। हिमालय में बर्फ जमता है 12 महीने, वह जल पिघल पिघल करके, बर्फ की चट्टानें पिघल पिघल करके नीचे आती और वो जल बादलों के कण जमते हैं हिमालय में, वो पवित्र कण वहां से निकलते जल बन करके। ऐसी भगवान की वाणी बड़ा पवित्र है, बड़ा निर्मल है, सार्वजनिक है। उस वाणी को यथावत ग्रहण करना, यथावत जीवन में उतारना, और उस वाणी के माध्यम से अगर परिग्रह का पोषण नहीं हो रहा है तो तुमको वाणी पच गई है, ये समझ लेना। उस वाणी को सुन करके अनासक्ति के भाव जग रहे हैं, परिग्रह से मुक्त होने के भाव जग रहे हैं, निर्ग्रंथ बनने के भाव जग रहे हैं, तो वाणी पच रही है। और निर्ग्रंथ मार्ग पर विश्वास नहीं है और परिग्रह मार्ग पर विश्वास है तो वाणी नहीं पच रही है। अभी जठराग्नि मंद है, बीमार है, अग्नि उद्दीप्त नहीं है, जठराग्नि में बीमारी है, और उसके लिए कौन सी औषधि लाएं? जठराग्नि को उद्दीप्त करने के लिए फिर वही बात आती है, भगवान की ही वाणी चाहिए। वहां भी भगवान की वाणी के अलावा अपने जठराग्नि को उद्दीप्त कराने वाली औषधि भी कोई नहीं है और शक्ति भी किसी में नहीं है। इसलिए जीवात्मा का कल्याण जिन वाणी से होता है जन वाणी से नहीं होता। जन वाणी राग जगाती है और जिन वाणी वीतरागता जगाती है। वीतरागता वह हिमालय है, वह पर्वत शिखर है, वह पवित्र स्थान है, जहां से वो निकलती है वाणी, वह सबको तीर्थ बनाती हुई निकल जाती है, सब तीर्थ बन जाते हैं। तीर्थ का तात्पर्य आत्मा को पवित्र बनाना। तीर्थ संसारी जीवों के आत्मा के अज्ञान को धोना, ये तीर्थ है। वो वाणी रूपी तीर्थ हमारे अज्ञान को दूर करती है, हमारे अज्ञान को दूर करती है, इसलिए उसको तीर्थ कहा। आत्मा को तीर्थ बनाती है, हर आत्मा को, संसारी प्राणी के हर आत्मा को स्पर्श करके तीर्थ बनाती आगे बढ़ती है। लेकिन उस घाट पर जाने वाला आवश्यक है ना, उस गंगा के घाट पर जाकर के उसको हमें प्यास बुझाने हेतु पीना आवश्यक है ना। अगर हम नहीं पिएंगे तो वो तीर्थ जो बह करके वहां हिमालय से यहां तक आई बनारस तक, तीर्थ क्या कर सकेगा। आप नदी के घाट पर नहीं जाते हैं तो नदी आपके लिए नहीं, जो जाते हैं उनके लिए है। जो जाते हैं उनके लिए है, जिनको प्यास लगी है उनके लिए है, जिनको प्यास ही नहीं है उनके लिए तीर्थ है ही नहीं। और प्यास किसको लगती है और प्यास किसको नहीं लगती है, जिसको प्यास लग रही है क्यों लग रही है और जिसको नहीं लग रही है उनको ऐसा क्यों नहीं लग रही है, उसमें भी कारण है। क्या कारण है? बस आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति। अगर परिग्रह की ओर है तो तीर्थ की प्यास नहीं लग सकती। आसक्ति अगर यह गंगा में बहती पावन जल धारा के प्रति है तो इसमें आसक्ति कम हो गई है परिग्रह में। जब परिग्रह के प्रति आसक्ति कम होती है तभी गंगा के जल को पीने के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। एक समय में दो काम नहीं होते, एक समय में दो काम हो ही नहीं सकते। संसार में भी आसक्ति है और भगवान के वाणी में भी हमें आसक्ति है, संयम में भी आसक्ति है। इधर जितनी मात्रा में आप आसक्ति को घटाते हैं उतनी मात्रा में आसक्ति इधर बढ़ती है। इधर जितने आप काम करते हैं धूप में उतनी प्यास जगती है, और छाया में बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो प्यास नहीं जगेगी काम करने पर भी। जितना आप परिश्रम करते हैं उसके आधार से व्यक्ति को प्यास लगती है और व्यक्ति उस प्यास को बुझाने के लिए कोशिश करता है, दौड़ने लगता है, ढूंढने लगता है, आविष्कार करने लगता है, चैन नहीं रहता। मैं कहां ढूंढूं, किधर जाऊं, किधर जाऊं। वस्तु स्मरण में आती है प्रति समय, आती जाती है। कहां मिलेगा पानी, केवल पानी के अलावा, पानी से पागल हो गया वो। तब हो गया जब प्यास लगी, पानी ढूंढने लगा, पानी के प्रति पागल हो गया। भूख लगी, भूख के प्रति, अन्न के प्रति पागल हो गया। कब हुआ? भूख लगी तभी ना। कब हुआ? प्यास लगी तभी ना। भूख और प्यास जितनी मात्रा में जगती है उतनी मात्रा में भोजन भी चाहिए पड़ता, और भोजन उतनी ही, भोजन उतना ही पचता है। भगवान के समोसरण में कोई आता है, भगवान सुकृति तो नहीं बन सकता। आठ मूल गुण दे देना, इनको इतनी ही भूख है, इतनी ही प्यास। भगवान प्रतिमा दे देना, आठ मूल गुण तो हम पहले से करते आए हैं, अब प्रतिमा लेने के भाव जगे हैं, तो भाव जगे हैं तो प्यास जगी है, भूख जगी है। भगवान इतना ही दे देना, क्या प्रतिमा मुनि बन जाओ ना भगवान। अभी तो क्या पीछे जरा विकल्प है, पीछे जरा विकल्प, अभी घर नहीं छोड़ सकते, बाल बच्चे हैं, पीछे बचे हैं, बाल बच्चे हैं, पीछे बचे हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास आने की अधिकारी अभी नहीं है, आप जैसे बनने के अधिकारी नहीं है, अभी बाल बच्चे हैं, वो बहुत पीछे हैं, उनको भी आगे करना है, फिर धीरे धीरे आपके पास ही आना है। लक्ष्य तो है, लक्ष्य है, लेकिन अभी उसकी भूख और उसकी प्यास अभी जगी नहीं है, आएंगे धीरे धीरे, एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते आपके पास ही आएंगे, लेकिन अभी तो प्रतिमा दे देना। इनकी भूख की मात्रा प्यास की मात्रा मध्यम है, आठ मूल गुण धारण कर रहा है, जघन्य भूख प्यास की मात्रा, प्रतिमा ले रहा है मध्यम भूख प्यास है, मुनि ही बन रहा है वो उत्कृष्ट भूख प्यास। समस्त दस परिग्रहों को तिलांजलि देकर त्याग करके जीवन पर्यंत के लिए मैं परिग्रह के बिना भी जीऊंगा, मेरे पास शक्ति है, मुझे परिग्रह की कोई जरूरत नहीं, ये संकल्प लेकर के एक साथ महावृति बन जाता है। कितनी बड़ी बात हो जाती है, गंगा के घाट पर गए और सबसे ज्यादा पानी पिया इसने, लोग ताज्जुब करने लगे, हम तो एक दो ग्लास पीते हैं और तुम घड़े के घड़े उतार लिया पेट में, ये कैसे संभव हो गया। यही तो चमत्कार है, किसका चमत्कार, आत्मा की चमत्कार, आत्मा में किसके चमत्कार, आत्मा में जो आसक्ति थी उस आसक्ति को खत्म कर दिया, एक घड़ा पानी पी लिया। ये आसक्ति किसी कुल में है और किसी कुल में नहीं है, किसी जीव में है और किसी जीव में नहीं है, अनादिकालीन सांसारिक प्राणियों में किसी में है किसी में नहीं है, ऐसा है हा? आसक्ति की कोई जाति, उसका कोई नामकरण, ये जैन की आसक्ति, हिंदू की आसक्ति, मुसलमानों की आसक्ति, क्रिश्चियन की आसक्ति, उस आसक्ति को कुलों की टीका, संप्रदाय की टीका कोई है ही नहीं। हम मानव हैं इतना पर्याप्त है, धर्म है अनासक्ति का भाव और अधर्म है आसक्ति का भाव। आप कोई भी हो, धर्म आपको शरण देता है। नदी के घाट पर हर व्यक्ति जाता है, पशु भी जाता है, मानव भी जाता है, नदी मना नहीं करता, तुम हरिजन है दूर हो जाओ, तुम्हारे लिए पानी नहीं है, नदी सबके लिए पानी पिलाता है। नदी सबके लिए है, वो किसी एक के लिए है एक के लिए नहीं, ऐसा नहीं, सबके लिए है। और निकली कहां से, हिमालय से। अब किसी दूसरे देश का आया व्यक्ति आया, बनारस के मंदिरों का दर्शन किया और नदी पर गया, नदी कहती तो दूसरे देश का है, भारत का नहीं, जा पानी नहीं पी सकता यहां, ऐसा। तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया धर्म जैन धर्म, वो जैन धर्म सार्वजनिक धर्म, समस्त प्राणी मात्र का धर्म। मानव तो हर मानव वहां पहुंचता और लाभ उठा लेता, मानव तो जाता ही है, त्रिरंच भी जा रहा है अपने प्यास बुझाने पानी पीने उस घाट पर, त्रिरंच तो जा ही रहा है, देव भी आ रहे हैं असंख्यात देव, तीन गति के जीव समोसरण में रहते हैं, देव गति, मनुष्य गति, त्रिरंच गति, तीन गति के जीव रहते हैं, एक गति का जीव वहां नहीं है। कौन सी गति? नरक गति। क्यों नहीं आते होंगे? एक तो वो विक्रिया नहीं बना सकते, देव लोग विक्रिया से आते हैं, मूल शरीर उनका वहीं रहता है, एक भी देव अपने मूल शरीर को लेकर के समोसरण में उतरता नहीं है, मूल शरीर सबके वहीं रहते हैं, उत्तर शरीर भेजते हैं और आत्मा के प्रदेश वहां से लेकर यहां तक टच रहते, आत्मा लंबी बन जाती है, रबर की तरह आत्मा लंबी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति है, देव वहां से यहां आ सकते। नारकी पृथक विक्रिया नहीं कर सकता, पृथक यानी एक शरीर का दूसरा शरीर पुतला बनाना और उसको भेजना समोसरण में, ये नारकी के पास कैपेसिटी नहीं है। अपृथक विक्रिया बताइए नारकी जीव को, विक्रिया करते हैं लेकिन अपृथक, पृथक नहीं कर सकते, जैसे देव लोग पृथक करके आ जाते हैं उनका शरीर यहां भी दिखता है समोसरण में, लेकिन वो पृथक विक्रिया वाला शरीर है, नारकी ऐसा नहीं आ सकता, वो अपने शरीर को छोटा बड़ा तो बना सकता लेकिन दो नहीं बना सकता, एक अलग निकाल करके समोसरण में भेज नहीं सकता, और मूल शरीर से तो नरक में से यहां तक आना संभव नहीं है, मूल शरीर से आने वाले दो ही गति के, एक त्रिरंच जाता है एक मनुष्य, मूल शरीर से जाते भगवान के पास। मुनि महाराजों को कहा देवता मूल शरीर से धरती पर नहीं आ सकते, उनके द्वारा दिया गया आहार मुनि ले सकते हैं क्या? चौका लगा करके आहार देने लग जाएं तो मुनि ले सकते हैं क्या? नहीं लेंगे आहार देने वाले? नहीं, वो तो रूप बना लेते हैं ना, समूह शरण में जितने देव आते हैं मूर्त रूप बना करके ही आते हैं, दिखते हैं, ना दिखने योग्य भी वो बना सकते हैं अपने शरीर को, दिखने योग्य भी बना सकते हैं। तो प्रश्न यही है, जैसे आप दिख रहे हैं इतनी ही संख्या में देवता लोग आकर के यहां बैठ सकते हैं, आपको दिख सकते हैं, हमको दिख सकते हैं, सबको दिख सकते हैं, पर ऐसे देवता अगर मुनियों को आहार दान देना चाहे दे सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं दे सकता प्रश्न उठता, इसको हमने एक बार बताया था मूल शरीर से तो आते नहीं, उत्तर शरीर से तो आते हैं, अब वो आहार क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि नवदा भक्ति करना असंभव है उनके लिए। नवदा भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, बोलना। आप जो बोलते हैं ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज, आहार ग्रहण करो, ये जब तक आप स्वयं प्रतिज्ञा नहीं करते, कहते नहीं, तब तक मुनि आहार ग्रहण आपके हाथ से नहीं करते, और शुद्धि बोलना आवश्यक है। यदि आप भूल करके शुद्धि नहीं भी बोले हैं तो दोष आएगा, शुद्धि बोल करके ही आहार देना चाहिए। शुद्धि क्यों बोला जाता है, क्यों बोलना चाहिए, उसका मतलब क्या? सम्यक तो से मतलब ही नहीं, यहाँ मैं मिथ्या तो छोड़ा हूँ, सम्यक दर्शन धारण कर रहा हूँ और आहार ले लो, इसकी कोई जरूरत नहीं। सम्यक दर्शन है तो आपके लिए है, वो तुम्हारे तुम कल्याण के लिए सम्यक दर्शन धारण कर रहे हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं उसको? मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तो आहार से मतलब है। उसको तुमने कैसे बनाया है, सत्य बोलो, सत्य बोलो, उस संबंध में सत्य विचार करो, और जो सत्य असली सत्य है उसको हमको बताओ, और फिर आहार उठा के हमको दो। आहार निर्दोष है या नहीं, ये मुनि को शंका है। ये तैयार किया हुआ आहार निर्दोष, 40 दोषों से रहित तुमने तैयार किया है क्या नहीं, ये हमको बताओ हाथ जोड़ करके। सत्य बोल रहा हूं, आहार शुद्ध है, ये वचन शुद्धि हो गई, सत्य बोला। सत्य बोल रहा हूं कि इसका काया को शुद्ध रखा है, मैंने स्नान किया है और वस्त्र निर्मल वस्त्र पहना है, सोने के वस्त्र। सत्य बोल रहा हूं, सोने के वस्त्र हैं, स्नान भी किया हूं, ये काय शुद्धि है। और मन में ऐसा कोई गलत विचार नहीं, झूठ की विचार नहीं, आहार भी शुद्ध है, मन से ही बोल रहा हूं, काया भी शुद्ध है, मन से ही बोल रहा हूं, ये मन से कह रहा हूं, काया शुद्ध है और वचन शुद्ध है, इसलिए मन भी शुद्ध है, और मैं आहार आपको देना चाहता हूं, आप लीजिए, लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर है, लेकिन तीन शुद्धि बोलना मेरा कर्तव्य है। मैंने तो बोल दिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, इसको क्यों जोड़ते? उसी के लिए तो बोलना पड़ रहा है, शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार के निमित्त से बोलना पड़ रहा है। काया शुद्ध है, शोले में हूं, स्नान किया हुआ हूं, ये आहार 40 दोषों से मुक्त है, ये मैं वचन से सत्य बोल रहा हूं, और मन में उसकी शुद्धि के संबंध में धारणा रखता हूं, जैसे मन में विचार है उस संबंधित वैसे ही बोल रहा हूं। आहार शुद्ध है, ये मन में है, सत्य है, और जो सत्य बात है उसी को बोल रहा हूं, ये 40 दोषों से रहित है। आहार के लिए शुद्धि बोलना पड़ रहा है, क्या ये केवल नाटक है, व्यर्थ है? शुद्धि बोलना एक व्यर्थ क्रिया नहीं? मुनि महाराज निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं, 40 दोषों से रहित आहार ग्रहण करते हैं, करना ही चाहिए, वो उनका नियम है, और वह निर्दोष आहार है या नहीं ये आपके शुद्धि बोलने से उनको पता चलता है। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। अब ये आहार प्रश्न उठता है, ये आहार किसके लिए बनाया है? किसके लिए बनाया है? स्वयं के लिए बनाया है। तो मुझे क्यों रोका, मुझे क्यों रोक दिया रास्ते में? दान के भाव थे, अतिथि समीभाव के भाव थे, इसलिए रोका। ठीक, अतिथि समीभाव के भाव थे इसलिए रोका है, इतना पर्याप्त है। मेरे लिए बना है क्या? स्वयं के लिए बनाया है। स्वयं के लिए बनाया है, ये निर्दोषता है, उस आहार की निर्दोषता है। मुनि के लिए बनाया है, ये दोष है, महादोष है। आप शुद्धि बोलेंगे तो झूठ बोल रहे हैं, नवदा भक्ति नहीं है, गेट आउट। मेरे लिए बनाया है और तुमने कहा कि हमारे लिए बनाया है, तो शुद्धि में गलती हो गई। पहला क्या बोला महाराज? मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि। भोजनशाला में प्रवेश करो, भोजनशाला में आ गए, बिठा दिया, पूजन भी किया, सब कुछ हुआ। महाराज आज तो चौका लगाए, देखो चौका लगाया है और बहुत दिन बाद आए आप और मानवी के टाइम में आए। विशेष जो कर्जिकाई बने हैं आपके लिए अलग से बनी है और हम तो साधारण बनाते खाते रहते हैं, हम तो शुद्धा शुद्धि का ख्याल हमको तो रहता नहीं। ये जो शुद्धि जो है ये आपके लिए करनी पड़ती है, आपके लिए ये अलग से तैयार किए और अच्छे से लेना आहार। आज निवेदन है आपसे, विकल्प मत करना कोई भी, हमारे पास कुछ भी कमी नहीं है, पेट भर खाना, जरा अच्छे से खाते जाना। मानवी चल रहा है, मानवी चल रहा है। तो महाराज उठ के चले गए। क्यों गए, क्या विकल्प आ गया? तुमने मानवी की कर्जी का हमारे लिए अलग से क्यों बनाया? मैं धोखे में पड़ गया, ये बात बाहर ही बताते तो मैं वहीं से चलता। वहां तो तुमने सत्य बोला ये समझ करके अंदर आए, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, वहां तुमने सत्य बोला ये समझ करके हम अंदर आए और यहाँ बिठा करके खूब निवेदन कर रहे हैं आप। आपके लिए बनाया, आपके लिए बनाया है। तो केवल कर्जी का ही मेरे लिए बने कि और भी कुछ है? महाराज बाहर नहीं लेंगे, वो 40 दोष में से एक दोष है, उनका सम्यक चारित्र बिगड़ता है। चारित्र रत्न त्रय में से चारित्र महान रत्न है, इसमें दोष आता है, इसलिए उनके लिए बनाई हुई आहार को वो नहीं लेते। व्यक्ति को क्या पता रहता है उनके लिए बनाने पर वो नहीं लेते कि नहीं लेते, लेते कि नहीं लेते, पता रहता है? अज्ञानी व्यक्ति को तो कुछ पता नहीं रहता और उससे पूछो तो सच बोलता है। पता नहीं है इसलिए सच बोल रहा है और पता होता तो छिपा के बोलता। पता नहीं है इसलिए सच बोल रहा है। नहीं महाराज आपके लिए बनाया है, ऐसे बोल बेधड़क बोल रहा है जैसे बालक बोलता है। क्यों, मम्मी पापा घर में है क्या? नहीं, मम्मी पापा घर में नहीं है ये कहने के लिए बताया है, लेकिन है वो अंदर। ये किसने कहा है? उन्हीं ने कहा है। वो कहाँ है? वो है, वो अंदर बैठे हैं। गड़बड़ है, मम्मी पापा गड़बड़ है, तू गड़बड़ नहीं है। मुनि के लिए पकाया हुआ भोजन मुनि के लिए नहीं चलता। यहां तक बता दिया, भोजन पकाते समय पता चल गया कि महाराज का संग आ रहा है और उसने एक मुट्ठी चावल और बढ़ा दिया। क्यों? हाय आ रहे हैं, जरा ज्यादा बनना चाहिए। ये भी दोष है, ये भी दोष। क्या करना? जितना आहार तुम स्वयं रोज बनाते हो उतना ही बनाओ। उतना ही बनाओ। यदि ज्यादा बना रहे हैं तो मुनि के उद्देश्य मत बनाओ। ज्यादा किस लिए बनाएंगे? फिर दूसरे के लिए बनाएंगे, वो भी नहीं चलता। सामुदायिक भोजन दूसरे के उद्देश्य और अपने उद्देश्य दोनों के उद्देश्य बनाया है, वो भी नहीं चलता। हाँ वो चलेगा जो आपके ही परिवार का व्यक्ति है, वो भी आहार दान देना चाहता है, उसमें शामिल होना चाहता है, वो भी देना चाहता है, उसमें वो भी खाना चाहता है, उनके लिए भी आपने बनाया और वो भी देना चाहता है अपने हाथ से, तो वो बात अलग है। उनके हिस्से में जो आपने भोजन बनाया है उस हिस्से में से वो भी अपने को देगा, वो चल जाएगा। परंतु वो नहीं चलेगा, उनको तो देना नहीं है, वो तो बाद में आने वाले हैं, उनके लिए भोजन बना है और उनके हिस्से के भोजन को आपने मुनि के लिए दे दिया, वो भी नहीं चलता, क्योंकि वो भोजन विकल्प का कारण बन सकता है, वो नहीं चलता। तो कौन सा चलता है? आप अपने घर वालों के लिए जो पकाया है शुद्ध तरीके से पकाओ। तक पकाने की तरीका अलग हो सकती है, शुद्ध वस्तु, शुद्ध जल, काया की शुद्धि, सब कुछ आप रख सकते हैं। ये सब शुद्धिकरण स्वयं आपको अपने लिए रखना चाहिए। चौका लगा रहे हैं, मतलब ये नहीं कि मुनि के लिए ये सब शुद्धि करनी पड़ रही है। ये शुद्धि भी अपने लिए करो, तब नवदा भक्ति का परिपूर्ण लाभ, परिपूर्ण पुण्य लगता है। ये शुद्धि भी अपने लिए ही करो और ये शुद्धि आपके लिए भार नहीं होना। क्या बता रहा हूं? ये 16 ये मर्यादित वस्तु रखना, ये आपके लिए, आपके स्वयं के लिए, आप अपने लिए कर रहे हैं तो क्या भार होगा? लेकिन दूसरे के लिए कर रहे हैं तो भार हो सकता है। कौन करे इतना सब? ये भाव आ सकते हैं कि नहीं? कौन करे इतना मेहनत? ये भाव आ सकते हैं कि नहीं? और ये आ गए तो भक्ति में कमी आई, मन की शुद्धि चली गई, श्रद्धा में कमी आई। तो ये सारे दोष कब आते हैं? तब आते हैं जब अपने लिए आप नहीं करते, तब सारे के सारे दोष आना प्रारंभ हो जाता है। जब आप अपने लिए भोजन पकाओगे तब आप अपने लिए जो कुछ भी करते हैं भार लगता ही नहीं। आप अपने लिए दुकान चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, भार लगता है कभी? लेकिन ऐसा हो तो पैसा तो दूसरा लेने वाला है लेकिन दुकान आप चलाने वाले, भार लगेगा क्या? नहीं, मैं तो फालतू काम कर रहा हूं। मिलेगा उनको और काम मेहनत मैं करूं, आपको दुकान चलाना भार लगेगा। भगवान ने कहा मुनि को आहार देना, लेकिन मुनि आपके लिए भार नहीं होना चाहिए, मुनि की चर्या आपके लिए भार नहीं होना चाहिए। और भार लगता है जहां वहां जाना ही नहीं, ये कहा। कितना निर्दोष मार्ग उपस्थित किया है आत्म कल्याण के लिए, कितना निर्दोष मार्ग है ये, किसी के लिए भार नहीं। मुनि साधु आपको स्वयं की रुचि रहना चाहिए, मुझे शुद्ध भोजन ही करना चाहिए उसमें रुचि, मुझे अपने परिवार में सदा ही शुद्धि से रहना चाहिए उस शुद्धि के प्रति, शुद्धिकरण के प्रति जो रुचि है वो स्वयं के वास्ते रहना चाहिए। इसलिए वो चार्ट छप रहा है, ऐसा होना है आपको, चार्ट भार नहीं होना चाहिए। आहार पदार्थों की मर्यादा का चार्ट जो छप रहा है उसमें जैसी मर्यादा है वैसे अपने घर को बनाओ, वो गृहस्थ धर्म है, श्रावक धर्म है, उसमें जितनी मर्यादा, उस मर्यादा के भीतर वस्तुओं का उपयोग करो। आटा की कितनी मर्यादा, पानी की कितनी मर्यादा, दूध की कितनी मर्यादा, उस मर्यादा के भीतर वस्तुओं को नित्य उपयोग करो। किसके लिए? स्वयं के लिए। वो चार्ट किसका? स्वयं का, स्वयं के लिए है। ऐसा नहीं समझना ये चार्ट मुनि महाराज जब आते हैं अपने गांव में तब ये चलता है और रोज तो हम अशुद्ध ही खाते हैं, ऐसा नहीं। उसमें 23 एक बातें हैं, 22-23 एक बातें हैं आहार पदार्थों की, उसमें चर्चा है। रोटी की कितनी मर्यादा, कितने घंटे की, दाल की कितनी मर्यादा, पानी की कितनी मर्यादा, दूध की कितनी मर्यादा, यानी उन वस्तुओं को जो मटेरियल रहता है आहार बनाने का, उन वस्तुओं को एक काल मर्यादा भी है, उस काल मर्यादा के बाहर उन वस्तुओं को उपयोग नहीं करना और उतना ही तैयार करना जितना उसका काल है, उतने दिन तक चलने लायक वस्तु ही तैयार करके रखना, उतने दिन तक उसका उपयोग करना, उसके ऊपर एक दो दिन चर्चा करना है डिटेल, जरा जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छा है, सबके हाथ में रहे और फिर डिटेल चर्चा हो, बहुत अच्छा रहेगा। विषय दूसरी तरफ जा रहा है, सारे दोष जो पैदा होते हैं वो सब मूढ़ता के कारण है। जिनवाणी का ज्ञान जिसके पास होता है उसके पास मूढ़ता नहीं होती, अज्ञानता नहीं होता, कहीं भी वो गलती नहीं कर सकता। आहार दे रहा है तो भी गलती नहीं करेगा, आहार की गलतियां भी अज्ञान के कारण से तो होती। 40 दोष क्या हैं मुनि के, ध्यान से सुनेंगे, 40 दोष मुनि के क्या हैं ये पता लगाना चाहिए। और ये 40 दोषों का उपदेश मूल में किसने दिया? भगवान ने दिया। मुनि को कैसा आहार लेना चाहिए और कैसा आहार त्यागना चाहिए, ये दोनों बातें बता दी। मुनि को मुनि के लिए बनाया गया आहार त्यागना चाहिए, गृहस्थ स्वयं के लिए बनाया हुआ आहार ग्रहण करना चाहिए मुनि को, ऐसा बताया। तो इसमें गुण और दोष क्या, गृहस्थ स्वयं के लिए ही स्वयं के लिए आहार बनाता है, ये स्वयं के लिए शुद्धि करता है, स्वयं के लिए आहार बनाता है, ये गुण है। और गृहस्थ मुनि के लिए शुद्धि करता है, मुनि के लिए आहार देता है, मुनि के लिए पदार्थ पकाता है, मुनि के लिए थोड़ा ज्यादा पकाता है, ये दोष का मार्ग है, ये दोष है। इस दोष को भगवान ने कहा, मुनि के लिए कहा, तुमको त्यागना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा चारित्र टिकेगा नहीं। चारित्र की निर्दोषता के लिए मुनि प्रयत्न करे, चारित्र उनका धर्म है, उनके धर्म को वो निर्दोष रखने के लिए वो प्रयत्न करे, और श्रावक क्या करे, उनका धर्म ऐसा है तो उनके लिए कुछ नहीं बनाना, ये सावधानी रखे, ये श्रावक का कर्तव्य, मुनि के लिए कुछ न बनाना। ये बात अलग है कि औषधि वगैरह तो मुनि के उद्देश्य बनाया जाता है, औषधि कितना, जब तक रोग, कितना देते हैं, पेट भरता है क्या, नहीं, जिससे पेट भरता है उस वस्तु को उनके लिए नहीं बनाना। औषधि क्या चीज है, रोग निवारक, तो ये तो उनके उद्देश्य ही बनाना पड़ता है, औषधि एक अपवाद मार्ग है, औषधि आप स्वयं के लिए थोड़ी बनाते हैं। मुनि को कौन सा रोग है, इसको देख के औषधि तैयार करेंगे या देखे बिना तैयार करेंगे, देखना तो पड़ेगा। तो औषधि तैयार करना बात अलग है, औषधि में भी उद्दिष्ट दोष आता है, लेकिन वो दोष, औषधि दोष क्षम्य है, आहार दोष क्षम्य नहीं है। हरि दोष, औषधि लेने पर भी मुनि को प्रायश्चित लेना पड़ता है, क्योंकि ये सब अपने रोग के वजह से उन्होंने तैयार किया और अपने को दिया, दोष तो आ गया है उसका, इसलिए प्रायश्चित है। औषधि तो कभी कभी लिया जाता है, रोग होने पर लिया जाता है। आहार, आहार तो जीवन है, ये तो रोज ले रहे हैं, और रोज रोज कैसे प्रायश्चित लोगे, फिर अपने लिए ही बन रहा है आहार, और रोज रोज प्रायश्चित लेते बैठोगे। तो कहा आहार मात्र मुनि को तैयार नहीं करना, स्वयं के लिए ही करना, आहार से औषधि को अलग रखा है। मुनि को मालूम है ये मेरे लिए औषधि बनी है, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ले रहे हैं, लेना पड़ता है, नहीं लेना चाहते हैं लेकिन लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना रत्नत्रय का पालन संभव नहीं है, लेना पड़ता है और लेते हैं, ले करके प्रतिक्रमण प्रायश्चित उसके प्रति करते हैं, दंड लेते हैं, ये भी गलत है ऐसा समझते, पर आहार स्वीकार नहीं करेंगे, आहार क्षम्य नहीं, आहार के दोष क्षम्य नहीं हो सकते। समझ में आ रहा, कैसे रहना, श्रावक धर्म, श्रावक जीवन कैसा, ऐसा मुनि के प्रति कैसी सेवा, इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, वो ज्ञान नहीं हो तो मुनि धर्म टिक नहीं सकता आपसे, मुनि धर्म को टिकाने वाले भी आपके आहार पर ही मुनि धर्म टिका है, मुनि टिके हैं, और आप में विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है इन दोषों का और गुणों का, तो मुनि धर्म टिकेगा क्या, मुनि तो दिखेंगे पीछे, कमंडलू, निर्ग्रंथता, नग्नता सब दिखेगी, लेकिन आप निरंतर दोषपूर्ण आहार दे रहे हैं, तो क्या रत्नत्रय है वहां? सम्यक चारित्र नहीं है तो नहीं है, और सम्यक चारित्र संयम है। चारित्र कहो संयम कहो एक ही बात है, संयम है वो, और वो संयम छठे सप्तम गुण स्थान में ही हो उपलब्ध होता है। अगर उस संयम में कुछ कमी आई तो गुण स्थान नीचे आता है, और फिर नीचे के गुण स्थान तो आपके गुण स्थान है। आपके गुण स्थान में हम प्रवेश कर गए तो अपने में और आप में क्या अंतर? दोन्ने भी होंती समाना ए गोविन संजदो होदी, दोनों समान हैं, उसमें से एक भी संयमी नहीं है, ये सिद्ध होता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है श्रावक की। मुनि धर्म को भी वही टिकाता है और अपने धर्म को खुद के धर्म को भी वही टिकाता है। आहार के बिना तो चलता नहीं। तत्काल मोक्ष होना हो तो आहार की जरूरत नहीं, जैसे बाहुबली भगवान एक भी आहार नहीं लिए, एक साल तक खड़े रहे तपस्या में दीक्षा लेते ही। उसके बाद एक साल के बाद केवल ज्ञान हो गया, आहार किया कहां? एक भी आहार नहीं लिया, केवल ज्ञान हो गया। आहार लेने पर ही केवल ज्ञान होता ऐसा है? मुनि दीक्षा लेने पर एकाध आहार किए बिना केवल ज्ञान नहीं होता, ऐसा कुछ है? केवल ज्ञान आहार लिए बिना भी होता है और आहार ले करके भी होता है, और केवल ज्ञान होने के बाद तो फिर तो भूख प्यास आदि बाधाएं होती ही नहीं, रहती ही नहीं। ज्ञान महत्वपूर्ण है। आगम का ज्ञान प्राप्त करते जाओ, पढ़ते जाओ, स्वाध्याय करते जाओ, जितना लिखा है उतना निर्दोष आचरण आप करोगे, मुनि का धर्म भी बचेगा, आपका धर्म भी बचेगा। सारे दोषों का मूल है मूढ़ता, आगम का ज्ञान न होना। आगम का ज्ञान हो गया तो सम्यक दर्शन के भी दोष आपको नहीं लगेंगे, और मुनि के साथ जो सेवा वैयावृत्ति आदि कार्य करते हैं उनके संपर्क में आते हैं उस समय में भी आपको दोष नहीं लगेगा। जैनागम का ज्ञान होने पर दोष क्यों लगेगा? हाँ, करे तो लग सकता है, पर मालूम तो है ना। मालूम होते हुए भी अगर दोष करे तो दोष लग सकता है। मालूम ही ना हो तो, स्वाध्याय ही ना हो तो, ज्ञान ही ना हो तो, कभी सुना ही नहीं हो तो हमेशा लगता रहेगा। दोष ही मार्ग है वहां पर। कैसा मार्ग? राजमार्ग। दोष अज्ञान अवस्था में दोष ही राजमार्ग रहता है, और ज्ञान अवस्था में दोष राजमार्ग नहीं रहता। कदाचित परिस्थिति वश करना पड़ता है दोष को, वो अपवाद मार्ग है, वो राजमार्ग नहीं। कदाचित लगता है, फिर उसके लिए प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण है, सब है। दोष लगे तो क्या करना चाहिए? घबराने की जरूरत नहीं। दोष लगता है, मजबूरी में दोष लगते हैं, मजबूरी के क्षण अलग हैं, परंतु तुमने दोष को ही राजमार्ग मान लिया तो ये गलत है। जैसे आजकल दोष को ही राजमार्ग मान करके, दोष को और वेश को दोनों को राजमार्ग मान करके चल रहा है एक पंथ, भट्टारक पंथ, उनमें सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं, वो वेश भी आगम के अनुकूल नहीं। समझ रहे? उस वेश में रत्नत्रय नहीं, केवल वेश है। और ये वेश धारण करना पड़ा था किसी काल में, किस लिए? वैसा धारण करने पर ही धर्म की रक्षा और समाज की रक्षा हो सकती थी। वो एक समय था, परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई थी, वो किंचित काल के लिए धारण करने की आवश्यकता थी। एक मुनि ही थे, मुनि को ही वस्त्र धारण करना पड़ा। लेकिन आज वो राजमार्ग बना रहे हैं, अपवाद मार्ग को राजमार्ग नहीं बना सकते। आज वो राजमार्ग हो रहा है, कंटिन्यू आगे बढ़ाना चाहते हैं। और समझते क्या है कि इसके माध्यम से धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा, धर्म है ही नहीं, धर्म की रक्षा कैसी? उस वेश में धर्म है क्या? फिर धर्म की रक्षा कहां कर रहे हैं अपने जीवन में? धर्म की रक्षा का मतलब जिस वेश में धर्म टिक सकता है उस वेश को धारण करके धर्म की रक्षा करो, वो है मुनि वेश, वो है छुल्लक या आइलक या प्रतिमाधारी या आरिका। तीन ही लिंग हैं जिनेन्द्र भगवान के मार्ग पर, एक निर्घंत मुनिलिंग, एक आरिका और छुल्लक ऐलक। दूसरे नंबर में इनको लिया है, छुल्लक ऐलक उत्कृष्ट श्रावक, दूसरा लिंग। पहला लिंग निर्घंत लिंग, तीसरा लिंग आरिका लिंग। तीन लिंग को छोड़कर चौथा लिंग वेश जैन धर्म में बताए नहीं गए हैं। अब ये चौथा हो गया, यदि राजमार्ग बनाते हैं तो वो चौथा हो गया। ये चौथा मार्ग मान्य नहीं है और उसको मान्यता दे दिया तो आपका भी सम्यक दर्शन खत्म हो गया। जो दे रहा है उसका सम्यक दर्शन भी नहीं, और जो उस वेश में है उसका भी सम्यक तो नहीं। और फिर दोनों मिलकर के क्या सोच रहे हैं? हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। मिथ्या विचार हुआ, हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अधर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की नहीं। और अधर्म की रक्षा करना अप्रभावना है। केवल वेशधारी की रक्षा करना अप्रभावना है। धर्मवान वेश की रक्षा करना प्रभावना है। जिनमें रत्नत्रय है उनकी रक्षा करना धर्म की प्रभावना है। अब वो दोनों ही मिलकर के राजमार्ग बनाना चाहते हैं तो अप्रभावना तब तक होती रहेगी जब तक ये उस पर दोनों मिलकर के चलते रहेंगे। उस वेश को मानने वाले और उस वेश को धारण करने वाले तब तक धर्म से दूर रहेंगे। वो नहीं महाराज, वो तो प्रभावना कर रहे हैं, वो तो विदेशों में जाते हैं, वो तो फलाने में जाते हैं, फलाना काम कर रहे हैं, धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। धर्म की प्रभावना है कहां? ये ऊपरी क्रियाएं धर्म की प्रभावना नहीं। धर्म को धारण करके इन क्रियाओं को करना धर्म की प्रभावना है। सही वेश बना लो, नकली वेश नहीं। जिस वेश में सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का आचरण हो वो सही वेश है। तो उस वेश में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मान्यता में ये है कि हम मुनि ही हैं, मुनि के समान ही हैं। अष्टक करवाते, पूजा होती, नमस्तु बुलवाते, नवदा भक्ति से आहार लेते, पालाभिषेक, शर पर ये कैसे? वो तो कुछ भी, फिर वो तो और अन्य विषय हो गया। वो जिस परिधि में चर्चा चल रही है उससे बाहर और हो गया वो। वो तो बहुत दूर गए, फिर और दूर, चंद्रलोक पर गए आप। आज लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं ना, ये भूल, सबसे बड़ी भूल यहीं से है। प्रथम कदम में आपकी भूल स्वाध्याय न करना। स्वाध्याय नहीं करेंगे ना तो ऐसे वेशधारी रहेंगे और फिर उस वेशधारी को आप समर्थन भी देंगे, ऐसा होता रहेगा। क्यों करना? जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन धारण करो, उसके लायक जिनवानी का जो मार्ग बताया है उसको स्वीकार करके चलो ना। लेकिन उसको स्वीकार करेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, ये अगर विकल्प हो तो बात अलग है। धर्म को दुकान बना लिया है फिर तो। और ये महापाप है, इससे बड़ा पाप प्रतिष्ठा और धर्म को दुकान बना करके चलना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है दुनिया में। चोरी है चोरी, पर धन की चोरी, पर संपत्ति की चोरी, खुद का तो कुछ है ही नहीं। नकली वेश बना करके धन कमाना और ये पाप करना, चोरी हो जाएगी। मैं वही कह रहा हूं, अज्ञान कहां है? ये मूर्ता की बात चल रही है आज। सारे अनर्थ, सारे दोष, सारे पापों की उत्पत्ति इस मूर्ता के कारण से होती है। ये मूर्ता है, मूर्ता से ही संपोषण होता है अज्ञान मार्ग का। मूर्ता से ही, ज्ञान न होने से ही व्यक्ति अपने को पतित बना लेता है, नरक में पहुंचा देता है। मूर्ता ही हमारा अहित कर रहा है, उसके कारण से हम गिर गए, हम नरक में पहुंच गए। ये दुकानदारी नरक गति का कारण है। अब यह भी ज्ञान नहीं हो तो फिर किस काम का वो दिल? हमारा जीवन पतित हो रहा है कि पावन बन रहा है, ये भी विचार करने की शक्ति नहीं है तो वो तो काम का ही नहीं है। उसको दूर रखो, जो समझना नहीं चाहता है उसको दूर रखो, उससे अलग हो जाओ। एक ही मार्ग, कोई लेन देन नहीं, अनायतन है वो। और अनायतन से संपर्क करने पर अपने धर्म में, अपने सम्यक्त्व में दोष लगेगा, हम अपनी चिंता करें। अपनी चिंता हम करें, उस अज्ञानी के कारण से हम क्यों अपने गुणों को दोष के रूप में कन्वर्ट करें, अपन दूर रहें, अपन सुरक्षित रहें, अपन ज्ञानी बने, ज्ञान दें, कल्याण करें, कल्याण कराएं, इतना ही करें। अनायतनों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, तभी आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। ये 25 दोषों का वर्णन जिनेंद्र भगवान ने क्यों किया? अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने सम्यक तो धर्म की रक्षा के लिए किया। अपना सम्यक तो गुण निर्मल रहे सदा, उसके लिए भगवान क्या करें? तो उन्होंने व्याख्यान किया, 25 दोषों से बचोगे ना, तुम्हारा सम्यक तो निर्मल ही रहेगा, तुम्हारा इस भव में भी कल्याण होगा और पर भव में भी कल्याण होगा। और इस मार्ग का ज्ञान जो नहीं रखते हैं उनसे दूर रखना। सुनना चाहते हैं तो सुनाना, नहीं सुनाना चाहते हैं तो दूर ही रहना उनसे। हाँ, शांति सागर महाराज ने एक ही बात कही थी, ऐसे शीतलाचार मार्ग से, मार्ग की और मार्गी की, मार्ग की भी और मार्गी की भी उपेक्षा करो, उपेक्षा। उपेक्षा करने को कहा, उपेक्षित कर दो, यानी व्यवहार मत रखो कुछ भी, ये उपेक्षा कहलाती है, मध्यस्थता, उपेक्षा। उपेक्षा करना कषाय है क्या? उपेक्षा का मतलब हम अपने सम्यक्त्व को निर्दोष हम पालन कर रहे हैं, इसका नाम उपेक्षा है। उसका द्वेष है क्या? उससे द्वेष भी नहीं, राग भी नहीं, वो अज्ञान है, अज्ञानी मानता नहीं है, अनाड़ीपन का काम करता रहता है। अब उपेक्षा की जाती है, कुछ समय उसकी उपेक्षा करके देखो, ऑटोमेटिक अज्ञानी अज्ञान मार्ग को छोड़कर आपके मार्ग पर आ जाएगा। आप उपेक्षा नहीं कर पाते इसलिए पोषण पुष्टि हो रही उसकी। आप जाते आते हैं, गलती यहां है, उनसे अपने को बचाओ, कुछ समय के लिए बचाओ, उसकी बुद्धि आ जाए ठिकाने पर, उसकी बुद्धि ठिकाने पर आ जाए और वो मार्ग पर लग जाए। इस दया भाव से उपेक्षा करो, द्वेष भाव से नहीं, दया भाव से, कि तुम्हारा भी उद्धार हो जाए इसलिए हम उपेक्षित हैं आपसे। दया भाव से उपेक्षा करना, ये सब करने पड़ेंगे। अनायतन 6 हैं, मूर्ताएं 3 हैं, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। सब तो समझ में आते हैं, गुरु मूर्ता देखो क्या लिखा है, आरंभ परिग्रह हिंसा से युक्त और संसार में डुबाने वाले कार्यों में लीन साधुओं का सत्कार करना व उनको भजना, ये गुरु मूर्ता कहलाती है। गुरु के लक्षण में क्या बताया था? विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते, ये गुरु का लक्षण का है। उससे जो उल्टा लक्षण है वो गुरु मूर्ता का लक्षण है। आरंभ परिग्रह में रहने वाले गुरु मूड हैं और जो निर्दोष रहते हैं वो सच्चे गुरु हैं, आयतन है, ये अनायतन है। देखो, विचार करो, गुरु में ही परिग्रह नहीं शोभता, आरंभ नहीं शोभता। परिग्रह आरंभ रहने से गुरु ही जब नहीं कहला सकते तो क्या परिग्रह रहने से भगवान कहला सकते? विचार करो, परिग्रह रहने से भगवान की उपाधि मिल सकेगी? परिग्रह रहते हुए आत्मा क्या निर्दोष गुणवान केवल ज्ञानी कहला सकेगा? ये भी सब अज्ञान की ही देन है। अज्ञानियों ने परिग्रही को भगवान बना दिया, हुई उसके पीछे लोग चलने लगे। ठीक है, हमारे परिग्रहधारी भगवान चलने वाले भी हैं। अब वो रास्ता न तो जानते हैं, न कुछ करना चाहते हैं, न करने की कोई जिज्ञासा है, न प्यास है, न स्वाध्याय है, न विचारक हैं, न सत्य से मतलब, न असत्य से मतलब। जो कर रहा है, एक गया तो सब गए, एक भेड़ गया तो उसके पीछे पीछे सभी भेड़ गए। भेड़ चाल वाले ज्यादा मिलते हैं संसार में, भेड़ चाल बहुत चलती है। उसका कारण है कि दिमाग नहीं चलाना चाहते, पांव को खूब चलाना चाहते। पांव को चला चला करके पसीना लाते हैं और समझते हैं कि बहुत धर्म किया, पांव इतने चल गए, पसीना आ गया, दिमाग जरा भी एक कदम भी नहीं चल पाया। दिमाग यानी ज्ञान, बुद्धि, बुद्धि कुंठित है, जहां है वहीं ठहरा है। पांव से और वचनों से चल रहे हैं, केवल वचनों से कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म है, हम जो कर रहे हैं वो धर्म है। पांव कह रहे हैं बिल्कुल आप चल रहे हैं धर्म के रास्ते पर, आप चल रहे हैं धर्म के रास्ते पर, लेकिन बुद्धि से नहीं चल पाए तो मूढ़ता के कोटि में रहोगे। बुद्धि से चलोगे, तर्क से चलोगे, सत्यासत्य का ज्ञान करके चलोगे तो मूढ़ता से बाहर आओगे और उस वक्त आप में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के दर्शन होंगे। रत्नत्रय का दर्शन वही होता है जहां पर तर्क से चलता है, विचार करके चलता है, गुण और दोष का निर्णय करके चलता है, वहां पर धर्म बसता है। बाकी में तो धर्म है ही नहीं, अधर्म के दर्शन होते हैं। गुरु में ही जब परिग्रह होने पर गुरु नहीं बन सकते तो भगवान कैसे बनाना संभव? भगवान तो वही बनता है जो गुरु है, और गुरु वही है जिसमें परिग्रह नहीं है। परिग्रह छोड़ने पर गुरु बनना होता है और गुरु बन करके ही भगवान बनना होता है। समझ में आ गया क्या आया? बहुत मामूली बात थी, बता दिया। परिग्रह छोड़ने के बाद ही गुरु बनना संभव, भगवान तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। परिग्रह छोड़ने पर गुरु बनता है, और जो परिग्रह छोड़ चुका है, गुरु बन चुका है, वही भगवान बनता है। भगवान बनने से पहले गुरु बनना ही पड़ता है। गुरु का तात्पर्य रत्नत्रय धारण करना, ये गुरु का लक्षण है। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सब प्रशस्यते। परिग्रह मुक्त गुरु को ही गुरु मानना, ये तुम्हारा सम्यक दर्शन है। परिग्रह इकट्ठा करने वाले को गुरु मानते हो तो तुम्हारा सम्यक दर्शन मलिन है, दूषित है। तुम भी डूब गए हो तो वो तो डूबे हैं, डूबे हो को देख करके तुम डूब गए। वहां आस्था नहीं रहती, वहां श्रद्धा नहीं रहती, वो मार्ग नहीं कहलाता, वो अनायतन है। परिग्रह सहित अवस्था, गुरु की अवस्था अनायतन अवस्था है। अब देखो ऐलक छुल्लक आरिका, ये परिग्रहधारी है क्या? नहीं है। इनको गुरु की कोटी में रखा है क्या? बोलो, आरिका गुरु की कोटी में है क्या? क्यों नहीं है? परिग्रह, परिग्रह अनायतन है, परिग्रह पाप है, पाप अनायतन है, और परिग्रह छोड़ना ये आयतन का प्रतीक है। नमोकार मंत्र में ऐलक छुल्लक आरिका आती है क्या? क्योंकि गुरु नहीं है अभी, इसलिए उसमें नहीं आते नमोकार मंत्र में। जो जो नमोकार मंत्र के भीतर होते हैं वो गुरु माने जाते हैं, और उनके पास नियम से परिग्रह नहीं होता, विषयों की आशा नहीं रहती, संयम रहता, ये सब कुछ गुण रहते ही हैं। ये गुणों के होने पर ही गुणों से गुरु बनते हैं, और इन गुणों की रक्षा करते करते तपस्या के माध्यम से घाती कर्मों को जब जीत लेते हैं तब भगवान बनते हैं। तो साधारण सी बात कह रहा था मैं, परिग्रह रहने पर जब गुरु ही नहीं बन सकते तो परिग्रहधारी को भगवान मानना तो बहुत दूर की बात है। अब इसका ज्ञान तो होना चाहिए पहले। और ये ज्ञान दुनिया में है ही नहीं, सब अनायतन को ही भगवान, अनायतन को ही गुरु, अनायतन को ही शास्त्र, परिग्रह को ही सब कुछ, दोष की पूजा, दोष की पूजा करना और धर्मात्मा मानना अपने आप को, ये अंधकार दुनिया में फैली हुई है सब जगह। जिधर भी देखो अनायतन की उपासना चल रही है, आयतन की उपासना कौन कर रहा है? और फिर बाद में दिमाग में ये बात आ जाए कि महाराज वो तो ठीक ही तो है, अनायतन की उपासना करने वाला ही ज्यादा है और हम अकेले क्या कर सकते इधर, चलो हम भी उधर ही चलते। अरे मूर्ख, तो अपने को एक को भी बचा लेता तो एक तो धर्मात्मा बनता, तुझे देख देख करके चार लोग और इकट्ठे होते, धर्मात्मा बनते, कल्याण करते। तेरे दिल में भी ऐसे ही विचार आ गए कि मैं अकेला तो पागल कहलाऊंगा बीच में, इन सब के बीच में, ये तो करोड़ों लोग हैं और मैं अकेला पढ़ूंगा और मैं पागल कहलाऊंगा। शर्म के मारे तुम धर्म को छोड़ोगे? सत्य समझ में आ रहा है और शर्म के कारण से तुम बहुमत को देख करके बहुमत में घुस गए, ये साहस नहीं। धर्म धारण करने वाला साहसी होता है, वो इतना साहसी होता है कि सत्य को सत्य ही कहता है और सत्य का आचरण करता है। वो दुनिया करे ना करे, दुनिया अपना कल्याण करे ना करे, मैं अपना कल्याण करूं, मैं अपने संसार से अपने आप को मुक्त करूं, चतुर्गति भ्रमण से मैं अपने आप को संभालूं, ये विचार विवेकवान के पास होता है। समय हो गया, जाना नहीं। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे।